में प्रवृत्त हो गए सो विदेह मोक्ष को भी त्याग के बैकुंठ आदि का लोगन की इच्छा धार के जावेगा। वो कह रहे हैं ना कि जितनी जितनी किसी की प्रारब्ध होगी, ब्रह्म ज्ञानी होवे चाहे दूसरा होवे, ब्रह्म ज्ञानी में जितनी प्रारब्ध होगी उतनी प्रवृत्ति करेगा, उतनी वो क्रिया करेगा। क्यों? जैसे पहले दृष्टांत दिता सी, सुके पत्ते है, वृक्ष के पत्ते टुट के नीचे गिर गए, तो उन्होंने अपनी इच्छा और क्रिया उन्होंने तो नहीं है, वो हवा का झोंका आएगा इधर ले जाएगा, हवा का झोंका आएगा उधर ले जाएगा, वो नाल क्रिया करते दिखाई देंगे, उन्होंने अपनी क्रिया कोई नहीं, ना उन्होंने इच्छा ही है पत्तियों की। ज्ञानी भी यही हाल हो जाता, ज्ञानी का शरीर भी ज्ञान हो गया, वो जे कर्म बाकी जे प्रारब्ध कर्म है वह उस हिसाब न इच्छा होएगी, जैसे जैसे कर्म है, अधिक प्रवृत्ति के कर्म है अधिक प्रवृत्ति होगी जनक आदि जैसे, और छोटी थोड़ी प्रवृत्ति है तो सुखदेव आदि ऐसे नंगे घूम रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं। जितनी जितनी प्रारब्ध होगी, जैसी जैसी प्रारब्ध होगी, ऐसे ऐसे इच्छा उस हिसाब न होंगी जाऊगी। फिर ऐसे क्यों भी उसकी इच्छा राज करने दी सी, और सुखदेव आदि बेचारे नंगे घूम रहे हैं, वामदेव जी आगे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऐसा क्यों? आंदे जदों साधन काल दे विच जेड़ी इच्छा रख के भजन किया जाएगा, बाद इच्छा निवृत्त हो गई। दूसरी गल, साधन काल दे विच जेड़ी पहले प्रबल इच्छा सी, वह इच्छा दे हिसाब नाल प्रारब्ध बनेगा। ध्रुव महाराज जी तुसीं देखिया सी, ध्रुव महाराज जी ने तपस्या की, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन भी दिते, तो भगवान ने कहा हुण पुत तू जा कर नू, तो वह कहिंदा भगवान ने उन्हें दस्या थोड़े दिन बाद तेरा जिहड़ा भरा उत्तम है ना, ये शिकार खेडने जाएगा तो जक्ष से हादसे मारा जाएगा, तो तेरी ओदी जिहड़ी माँ वा वो उन्हूं लभण दे वास्ते जाएगी, वह भी दावा नगली दे विच पेड़ टुट के गिरेगा उत्ते, वह मर जाएगी, फिर तो तू रह जाएगा अकेला, तेरा पिता तेन राज दे के बन नू चल जाएगा, फिर तू राज करी। कहिंदा मैनू राज नहीं चाहिए, ध्रुव जी कहिंदे आंदे हुण तुम्हारा दर्शन हो गया, हुण राज मैं की करूँगा? आंदे नहीं बई, तेरी जदों तू इस साधन विच लगा सी उदों तेरी इच्छा सी, इस वास्ते हाँ जी, तो हुण तेरी इच्छा निवृत्त हुई है, पर जदों तू इस साधन दे विच लगा सी उदों तेरी इच्छा सी राज करने दी, इस वास्ते वो इच्छा हुण पूर्ण करना मेरा बनता है, इस वास्ते तू जाके राज कर। तो ब्रह्म ज्ञानी का भी यही हाल है, जदों साधन दे विच लगा उदों जिहड़ी इच्छा सी मन विच, जे विरक्त सी कुछ नहीं चाहिए तो उहदी प्रारब्ध ऐसी बनेगी, और जिहड़ा पहला करदा सी मैनू कोई मैं मंत्री बना राजा बना, फिर ज्ञान हो गया तो वह फिर ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी, ठीक है ना। कोई ऐसी शंका करे हैं जो जीवन मुक्ति के सुख को त्याग के तुष भोगन में प्रवृत्त होवे, सो विदेह मोक्ष को भी त्याग के विकुंठ आदि के लोगन की इच्छा धारे धार के जावेगा, सो शंका बने नहीं। कहते जीवन मुक्ति के सुख का त्याग और भोगन में प्रवृत्ति तो ज्ञानी की प्रारब्ध से हो संभव है, ये तो प्रारब्ध से हो जाएगी है ना। विदेह मोक्ष का त्याग और परलोक को गमन संभव नहीं, काहे ते ज्ञानी के प्राण बाहिर गमन करे नहीं, ये वेद का सिद्धांत है। ब्रह्म ज्ञानी दे जिहड़े प्राण है वो गमन करते नहीं, जिन्ना चिर प्राण नहीं गमन करेंगे नरक स्वर्ग दे विच, और उन्ना चिर लोक की प्राप्ति कैसे होगी, उदे प्राण जिते हैगा सी उत्थे लीन हो जाएंगे, हवा दे श्वास जिहड़े हवा च मिल जाएंगे, जिहड़ा टैंपरेचर है अग्नि का तत्त अग्नि च मिल जाएगा, और जिहड़ा हड्डियां मांस ये पृथ्वी का तत्त पृथ्वी च मिल जाएगा, जिहड़ा खून बाकी है वो जल का तत्त जल च मिल जाएगा, आकाश आकाश च मिल जाएगा, पंजे भूत उत्थे ही है, पंजा भूतों च लीन हो जाएगा, जाएगा कितने, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के प्राण बाहर गमन करे नहीं, जाते परलोक गमन संभव नहीं, और विदेह मोक्ष का त्याग भी संभव नहीं, काहे ते ज्ञान ते अज्ञान की निवृत्ति होई के प्रारब्ध भोगते अनंतर सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म शरीर का अज्ञान का चेतन में लय विदेह मोक्ष कहिए हैं। विदेह मोक्ष किनू कहिंदे, पहले समझ लो, ਵਿਦੇਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਅਵਸ਼ਯ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਲ ਅਗਿਆਨ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਅਥਵਾ ਨਸ਼ਟ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਫਿਰ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੋ ਵਿਦੇਹ ਮੋਕਸ਼ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਮੂਲ, ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਫਿਰ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਹ ਮੋਕਸ਼ ਮੇਂ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੀਪਕ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਈ ਵੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਏਗੀ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੂਲ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਫਿਰ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਹ ਮੋਕਸ਼ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਿਦੇਹ ਮੋਕਸ਼ ਕੇ ਤਿਆਗ ਮੇਂ ਤਥਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਗਮਨ ਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੰਭਵੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਇੱਛਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਾ ਭੋਗ ਸੰਭਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਰਚੇ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਣੇ ਬਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਏ ਉਤਨੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਛਾ ਬਿਨਾਂ ਭੋਗ ਸੰਭਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਗ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਾ ਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਂ ਅਥਵਾ ਇਸ ਲੋਕ ਮੇਂ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਂ ਅਥਵਾ ਇਸ ਲੋਕ ਮੇਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੀ ਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਿਆਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਕਈ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਉੱਗੇਗਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਂ ਅਥਵਾ ਇਸ ਲੋਕ ਮੇਂ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਪੂਰਵ ਇਸੀ ਤਰੰਗ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰ ਆਏ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਵਿਦੋ ਮੋਕਸ਼ ਤਿਆਗ ਕੀ ਵਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਗਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮੰਦ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸੁਖ ਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮੰਦ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸੁਖ ਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਉਹ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੋਗਾ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਅੰਤਰ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਅਧਿਕ ਭੋਗ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਨਕ ਆਦਿ ਕੂ ਸੰਭਵੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮੇਂ ਜਹ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਬਾਹਿਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁੱਖ ਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸਕੀ ਵਿਰੋਧਨੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਤ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਧਨ ਹੋਇਆ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ते सानू फिर क्यों बंधन लग रहा है? ये भुलेखे ने लग रहा है, भुलेखा ही पिया, होर कुछ नहीं। आत्मा नित मुक्त है, अविद्या से बंध प्रतीत होवे है, अज्ञान से बंध प्रतीत हो रहा है, बंधन है नहीं। ठीक है, जिस काल में ज्ञान होवे है तिस काल में अविद्याकृत बंध भ्रम नष्ट होवे है, ज्ञान हुए ते फिर बंध भ्रांति होवे नहीं। शरीर सहित को बंध भ्रम का अभाव ही जीवन मुक्ति कहिए है। ठीक है, हाँ जी, शरीर सहित, शरीर जे शरीर दी भ्रांति ना हटी तो फिर कितना बनेगा, शरीर तो भी परे हटना पौगा ना, ता ही तो गल बनेगी। शरीर सहित कहा, इसलिए शरीर सहित को बंध भ्रम का अभाव ही जीवन मुक्ति कही है। शरीर का भी भान नहीं होना, शरीर भी मैं नहीं, इसनों भी पिछे छड़ना पड़ेगा। हाँ बस वो जीवन मुक्त है। ठीक है ना, देह आदिकन की प्रवृत्ति में तथा निवृत्ति में ज्ञानी को बंध भ्रम आत्मा में होवे नहीं, जानते बाहर प्रवृत्ति में भी जीवन मुक्ति दूर होवे नहीं, तो भी बाहर प्रवृत्ति में जीवन मुक्ति को विलक्षण सुख होवे नहीं, जीवन मुक्त को भी। ठीक है ना, एकाग्रता रूप अंतःकरण परिणाम ते सुख होवे है। सुख कदों होगा, कोई अखा मीट के बैठा है, कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, पाठ कर रहा है गुटका लै करके, जे उदा मन एकाग्र है आनंद आएगा, जे मन एकाग्र नहीं आनंद नहीं आने वाला, जो मर्जी कर लो, जितनिया मर्जी अखा मीट के बैठ जाओ, कन्ना चुंगलियां दे के बैठ जाओ, जिथे मर्जी टोया पुट के नीचे बैठ जाओ, कमरे दे कुंडी लगा के बैठ जाओ, मन एकाग्र होया तब आनंद आएगा। मन एकाग्र नहीं है आनंद नहीं आने वाला। एकाग्र परिणाम बाहर वृत्ति में होवे नहीं, जब वृत्ति बाहर घूम रही है तो एकाग्र परिणाम कैसे हो जाएगा अंतःकरण का? अंतर्मुख होगा तभी तो होगा, तो अंतर्मुख जब होएगा उदो वृत्ति टिकेगी तो आनंद आवेगा। इस जिसको नहीं आनंद आ रहा वो ये समझ ले कि मेरा मन अभी तक एकाग्र ही नहीं हुआ। सीधी गल, जिहड़ा जितने पाठ किए जितने जप किए, वो जैन निवासी ब्राह्मण का भागवत के ग्यारहवें स्कंद विच कथा आती है। वो कह अपना ये उन्होंने गाना गा रहा, एक क्या कह रहा है, ये जितनिया प्रवृत्तियां है, जितने पुन कर्म है, जितने धर्म किए है, उन्होंने सारे का फल एक है, किड़ा मन एकाग्र हो जाना। जे कह रहे हो मन एकाग्र नहीं होया तो समझो जितने पुन तीर्थ स्नान दान किए उन्हों का फल नहीं मिलया। मोटी जी उदाहरण, जितने दान पुन किए हैं, जितने स्नान किए हैं, जितने धर्म कमाए, उन्हों का फल एक ही है, कादे वास्ते कमाए, मन एकाग्र हो जाए। तो जे मन एकाग्र नहीं होया तो समझो सारे जड़े पुन हैं, जितने धर्म कमाए हैं, उदा फल सानू नहीं मिलिया। ठीक है ना, इस रीति से प्रारब्ध भेद ते ज्ञानी पुरुषन के व्यवहार नाना प्रकार के हैं, परंतु जाका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का हेतु होवे है ताका मंद प्रारब्ध कहिए हैं। काहे ते अधिक प्रवृत्ति एकाग्रता की विरोधनी है, जितना ज्यादा भजो दौड़ोगे मन एकाग्र हो जाएगा, वो तो विरोधी हो जाएगा, सगो चंचल करेगा भज दौड़। और एकाग्रता बिना निरुपाधिक आनंद प्रतीत होवे नहीं, जदो एकाग्र नहीं होया मन तो निरुपाधिक आनंद प्रतीत नहीं होगा, जह समाधि निरूपण में कही है। ये पहला दसा है तुहानू कि जिन्ना चिर किसी का मन एकाग्र नहीं हुंदा उन्ना चिर आनंद का तो नाम ही भुल जाओ, आना तो दूर की गल। ज्ञानी का व्यवहार का निजम, ज्ञानी के व्यवहार का निजम, हुण कह रहे हैं भी ज्ञानी का जिहड़ा व्यवहार है उहदे विच निजम है कोई? तो निजम तो लगाउणा वेद ने, तो वेद तो उपर उठ गया, वो तो फिर निजम कौन लगाएगा उत्ते? बई नियमां तो उपर चल गया, वेद तो उपर चल गया, तो इस वेलिए कोई नियम नहीं है। जो पूर्व कहया ज्ञानवान को सर्व अनात्म पदार्थ में मिथ्या बुद्धि होवे है। जितने अनात्म पदार्थ है आत्मा नु छड़ अनात्म है ना, आत्मा इति अनात्मा, मतलब अनात्मा मतलब आत्मा नु छड़ करके बाकी जितने पदार्थ है उन्होंने कहवांगे अनात्मा पदार्थ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञानवान को सर्व अनात्मा पदार्थ में मिथ्या बुद्धि होवे है, राग होवे नहीं। बस तो राग कैसे हो जाएगा, जो एक बारी पदार्थ नु देख लिया भी मिथ्या है तो उतना राग कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, राग हो बन जाते प्रवृत्ति संभव नहीं, सो शंका भी बने नहीं कहे थे। जैसे देह विषय मिथ्या बुद्धि भी ज्ञानी को होवे है, अब वो कह रहे सारे पदार्थों में मिथ्या बुद्धि होगी तो राग नहीं होगा, तो कहते ऐसे सारे पदार्थों में देह ही आ गई तो देह दे मिथ्या बुद्धि नहीं हुई ज्ञानी की, देह भी तो मिथ्या बुद्धि हुई पर देह नु लैके फिर कम कर रहा हो तो कैसे कैसे लग रहा है। आपने पेपर देखा होगा को कागज नु जला दो, कागज जल गया पर वो अक्षर तुम फिर पढ़ सकते, हाथ नहीं लाते, मतलब की होया कि वो कागज के अक्षर तो तुम पढ़ सकते जो कागज वांगू दिखाई भी देगा पर व्यवहार नहीं कुछ कर सकते। रस्सी जल गई पर वट नहीं गया, कह देंगे ना रस्सी जल गई रस्सी वांगू प्रतीत होएगी पर व्यवहार नहीं तुम कर सकते, बस यही हाल ज्ञानी के शरीर का है। ये है बस यही हाल शरीर का, ज्ञानी के शरीर का। जैसे देह विषय मिथ्या बुद्धि भी ज्ञानी को होवे है तो भी देह के अनुकूल जो भिक्षा आदि हैं तिनमें केवल प्रारब्ध से प्रवृत्त होवे हैं। अगर वो कह रहे हैं देखो जे देह मिथ्या बुद्धि होगी तो राग नहीं होया तो देह विच ते मिथ्या बुद्धि होई ज्ञानी दी तो फिर वो भोजन आदि जेडे इहदे अनुकूल है गर्मी सर्दी उन्होंने तो बचता ही है, तो क्यों बचता है प्रारब्ध के हिसाब से और कुछ नहीं। तैसे जिसका अधिक भोग का प्रारब्ध होवे तिस ज्ञानी की अधिक प्रवृत्ति भी होवे है। जैसे बाजीगर के तमाशे को मिथ्या जान के सर्वलोकन की प्रवृत्ति होवे है, अब बाजीगर का तमाशा की जा समझते तुसी मिथ्या तो फिर क्यों देखने जाते जो पता मिथ्या है। कितना सुंदर दृष्टांत है, कहते जो बाजीगर का तुसी तमाशा देखने जाते जे तो तुहानू पता नहीं भी मिथ्या है तो फिर क्यों जाते जे, तो जे तुसी चले जा सकते तो ज्ञानी अपने मिथ्या शरीर में व्यवहार नहीं कर सकता। सारे काम करने हैं। दूसरा दृष्टांत यह दिंदे है जैसे कोई नाटक कर रहा है जब फिल्म दे विच कोई पात्र है ना, वो डाकू तो नहीं है तो डाकू का रोल कर रहा है, क्या जो डाकू का रोल कर रहा है क्या वो अपने आप नूं भुल गया भी मैं कौन हूँ। जदों डाकू का रोल कर रहा है क्या वो अपने आप नूं भुल गया भी मैं कौन हूँ, तो जो अज्ञानी नहीं भुल सकता ज्ञानी कितना भुल जाएगा भी मैं ब्रह्म हूँ, व्यवहार करता रहे, बस यही काम है, इतना ही काम है। ऐसे सर्व पदार्थन में ज्ञानी को मिथ्या बुद्धि हो गए हुए से भी प्रवृत्ति संभव है, और जो ऐसा कहे जाकू जिस पदार्थ में दोष दृष्टि हो गए ताके विषय तिस पुरुष की प्रवृत्ति होवे नहीं। ज्ञानी को अनात्म पदार्थ में दोष दृष्टि होवे है राग होवे नहीं जाते प्रवृत्ति संभव नहीं, सो बने नहीं आंदा वो भी गल नहीं ताड़ी बनती। कैसे कहे थे जिस अपथ सेवन में रोगी ने अन्य व्यतिरेक ते दोष निश्चय किया है ता अपथ सेवन में प्रारब्ध से तैसे रोगी की प्रवृत्ति होवे है। अपथ सेवन मैंने परहेज जिन्हों कहते हैं, को रोगी है उन्होंने दस देता तू ये चीज़ का परहेज करना, वो कब तक करेगा, जब तक रोग है फिर थोड़ी करेगा, तो फिर क्यों करेगा, तो ज्ञानी जड़ा है वो कब तक व्यवहार करेगा, जब तक प्रारब्ध है, जब प्रारब्ध समाप्त हुई सारे काम समाप्त हो गए। तैसे प्रारब्ध से ज्ञानी की सर्व व्यवहार में प्रवृत्ति दोष दृष्टि हुए से भी संभव है, इस रीति से ज्ञानी के व्यवहार का निजम नहीं। जह पक्ष विद्यारण स्वामी ने विस्तार से तृप्ति दीप में प्रतिपादन किया है। ये एक ग्रंथ है, विद्यारण स्वामी ने लिखा पंचदशी, पंचदशी उदा नाम ताम पिया, उदे विच 15 ग्रंथ है छोटे छोटे, एक ही जिल्त एक ही है, एक जिल्त विच छोटे छोटे 15 प्रकरण है। उन्हूं कहिंदे पंचानम दसानम समाहारा इति पंचदशी। ये पंचदशी दे विच तृप्ति प्रकरण है। तृप्ति माने जैसे भोजन करके तृप्त हो जाता है ना, ऐसे ज्ञानी सदा तृप्त रहिंदा। हाँ आ गया, हाँ जी, कोई नहीं, अगले साल वो पढ़ावांगे। और क्या जानते, तत्व दृष्टि का व्यवहार नियम रहित है। समाधि रूप निजम की विधि सुन के तत्व दृष्टि हसे है। वो कह रहे हैं ना समाधि लाउनी चाहिए है ना, तो वो गल्ला सुन के हसदा। उत्तम अधिकारी सी जिहड़ा, वो हसदा क्यों, उन्हें तो कर लिया जो करना सी। हाँ वो हसदा हुण इन्हां दी गल्लां सुन के, ठीक है। देखो, अब तत्व दृष्टि का देश आदि का अपेक्षा रहित देहपात। देखो जो ज्ञानी है वो जिथे मर्जी शरीर छड़ दे, चाहे काशी में छड़े, चाहे गंगा दे किनारे छड़े, चाहे शमशान घाट दे छड़े, चाहे किते मलिन किनू कहिंदे आ, वो की कहिंदे उहनू, चंडाल दे घर च छड़े, जां वो की बुच्चड़खाने च छड़े, वो सदा ही मुक्त है। जिथे क्यों, क्योंकि जो अज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान हुआ, मुक्त उदो ही हो गया। बाकी शरीर का की है, जिथे मर्जी निकल जाए प्राण। अब यही प्रसंग चलेगा। अब देखो, भरम करत कुछ काल ज्यू, कुछ काल तत्व दृष्टि जिहड़ा सी वह भ्रमण करता रहा, ज्ञान होने के बाद अपनी प्रारब्ध जिहड़ी सी उहनू भोगदा रहा। भरम करत कुछ काल ज्यू तत्व दृष्टि सुजान, भोगे निज प्रारब्ध तब लीन भए तेह प्राण। अंदे तत्व दृष्टि जिहड़ा सी उत्तम अधिकारी, राजा दा सबसे बड़ा पुत्र सी, उन्हें की कीता, भरम करत कुछ काल ज्यू, कुछ टाइम उसने ज्ञान होने तो बाद बिताया घूम फिर के। किसने, तत्व दृष्टि सुजान, सुजान मैंने अच्छी प्रकार जो जानने वाला सी, ज्ञानी पुरुष सी, उसने ऐसे टाइम बताया। फिर की होया, भोगे निज प्रारब्ध तब, जब वो प्रारब्ध समाप्त हुई, लीन भय ते प्राण, उसके प्राण लीन हो गए। लीन क्यों कहा भाई, लीन क्यों कहा, क्योंकि प्राण उदे गमन करनगे, तां ते कहिंदे वी उदे प्राण गमन कर गए। वो जिथे शरीर पूरा होया, प्राण उदे उत्थे लीन हो गए, इसलिए लीन कह दिता, ठीक है ना। प्रारब्ध भोगते अनंतर ज्ञानी के प्राण गमन करे नहीं, देख लो, प्रारब्ध भोगते अनंतर मैंने बाद, ज्ञानी के प्राण गमन करे नहीं, जाते तत्व दृष्टि के प्राण लीन हुए जह कहया। और ज्ञानी के शरीर त्याग में काल विशेष की अपेक्षा नहीं, काल मैंने केड़े काल च उहदा शरीर पूर होए भी नहीं, केड़ा उत्तरायण, देखो उत्तरायण में अथवा दक्षिणायन में देह पात होवे, सर्वदा मुक्त है, वो मुक्ति है, सर्वथा मुक्त है। तैसे देश विशेष की अपेक्षा नहीं, किड़े देश विच गंगा किनारा, काशी, मथुरा, ऐसे एदी भी जरूरत नहीं, क्यों, काशी आदि कुपनीत देश में अथवा अत्यंत मलिन देश में ज्ञानी का देह पात होवे, सर्वथा मुक्त है। तैसे आसन विशेष की अपेक्षा नहीं, हाँ पृथ्वी में शव आसन ते अथवा सिद्ध आसन ते देह पात होवे, वो भावे प्या वा तम प्राण निकल गए, चाहे बैठे बैठे दे निकल गए, वो मुक्ति है। तैसे सावधान ब्रह्म चिंतन करते का अथवा रोग व्याकुल हा हा शब्द पुकार के पुकारते का देह पात होवे, सर्वथा मुक्त है। वो कह रहे हैं तैसे सावधान होके ब्रह्म चिंतन कर रहा, उदे प्राण निकल गए, जां रोग लग गया, कोई व्याकुल हा हा मर गया ऐसे कर रहा, प्राण निकल गए, वो मुक्त है, क्योंकि मुक्त उदो ही हो गया जो ज्ञान होया सी उन्हूं, वो तो मुक्त पहले हो गया, बाकी दे जड़े उदी प्रारब्ध है वो भोग रहा। वो काहे ते जिस काल में ज्ञान ते अज्ञान निवृत्त होया, तिसी काल में ज्ञानी मुक्त है। जाते ज्ञानी को विदेह मोक्ष में देश काल आसन आदि की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा मतलब जरूरत, देश और काल और आसन कैसे भी हो, कैसा देश हो, कैसा काल हो, कैसा आसन हो, किसी की जरूरत नहीं। प्रारब्ध भोग है, जानता तो है भी मैं ब्रह्म हूं। क्या ना देखो ना की कह रहा, रोग व्याकुल हा हा शब्द करते पुकारते का, तो जो रोग दा रोग लग गया उन्हें प्रारब्ध हिसाब से तो हा हा कर रहा, मर गया मर गया, तो यदा अर्थ ये थोड़ी है मुक्त नहीं है, वो मुक्त तुझे पहले ही हो गया, वो प्रारब्ध भोग रहा बस, और की जेडे प्रारब्ध प्रारब्ध भोग रहा प्रारब्धित कर रही है। ना ना वह जो मन दुख है ना वो अंतकरण महसूस कर रहा ना, अंत लेसा विद्या है कि नहीं, लेसा विद्या उन्होंने कहते हैं, जैसे तुसी किसी पात्र दे विच तेल पाया जा घी पाया उस पूरा उल्टा करके निकाल लिया और फिर भी वह तेल लगा नहीं रहेगा, चकनाई उन्होंने कहते हैं। ऐसे ही ज्ञान होने के बाद लेसा विद्या जड़ी वो बाकी रहेगी, जड़ी प्रारब्ध भोग कराएगी, जे पूरा ज्ञान नष्ट हो जाए तो उसी समय मर जाए। जे मतलब पूरा अज्ञान नष्ट हो जाए तो अज्ञान का कार्य है शरीर, तो जे अज्ञान नष्ट हो गया तो शरीर कैसे बचेगा, वो जी लेसा विद्या बाकी बची है वो प्रारब्ध भोग कराएगी, बस उन्होंने कहते लेसा विद्या, जैसे तेल पाया बर्तन च उन्हू कढ़ लिया तो फिर भी वो चिकनाई तो चिकनाहट तो रहेगी, तो उन्होंने जैसे वह चिकनाहट रह गई ऐसे अज्ञान नष्ट हो गया, फिर भी वह चिकनाई जी चिकनाहट की तरह लेसा विद्या शास्त्र कहते लेस मात्र विद्या रह जाएगी। हाँ लेस मात्र विद्या रहेगी जिड़ी प्रारब्ध भोग कराएगी। जाते ज्ञानी को विदेह मोक्ष में देश काल आसन आदि की अपेक्षा नहीं, जैसे ज्ञानी को देह पात में, देख लो हम ध्यान से सुन लेना, जैसे ज्ञानी को देह पाते देश काल आदि की अपेक्षा नहीं, तैसे ज्ञान के निमित्त श्रवण में भी देश काल आसन आदि की अपेक्षा नहीं। तुसी किदां बैठे जे हुण देखो, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई पैर उपर करके बैठा है, कोई लेट के सुन लिया, आंदा वेदांत सुनो वो ये दे विच आसन की जरूरत नहीं, कैसे भी सुन लो, सीधा हिसाब आंदे जदों ज्ञानी नूं देह पात दे विच देश काल आसन की जरूरत नहीं, ऐसे जिहड़ा सरवण है उन्हूं भी देश काल आसन की जरूरत नहीं, जदों तुहानूं मिल जाए सुन लवो, जिदा बैठे जे बैठ जाओ सुन लवो, जेड़ा देश है जेड़ा काल है जदों भी तुहानूं टाइम लगे सुन लवो, बस देश ना देखो काल ना देखो आसन ना देखो, जिदा तुहानूं टाइम लगता सुन लवो, बस मतलब तो सुन दे नाल है, ठीक है ना। ये देखो क्या कह रहे हैं, जैसे ज्ञानी को देह पात में देश काल आसन आदि की अपेक्षा नहीं, तैसे ज्ञान के निमित्त श्रवण में भी देश काल आसन आदि की अपेक्षा नहीं, जेडे श्रवण कर रहे उन्होंने भी देश काल आसन की कोई जरूरत नहीं, जैसे बैठो बैठ जाओ सुन लो बस, ठीक है। और उपासक को देश काल आदि की अपेक्षा है, उपासक जो है उपासना कर रहा है जो उन्हू देश काल दी आसन दी जरूरत है, इसलिए जो भजन करोगे जप करोगे किधर नू मुख होना चाहिए सारा दसूगा कोई, जो को जाओगे और जो वेदांत चिंतन कर रहे हो जो सुन रहे हो हूँ तू थोड़ी को कहगा तुम पूर्व वाल मुख कर क्यों नहीं बैठे बी, उत्तर वाल मुख करके बैठना चाहिए सी और तुम दक्षिण वाल बैठे जी, इधर से ताड़ा सरवण निष्फल गया नहीं, आंदा जैसे भी मिल जाए सरवण कर लो, जिधर नु मुख होवे जैसे बैठे हो बैठ के जैसा देश है जैसा काल है सुन लो, ठीक है। यद्यपि भीष्म आदि को ज्ञानी कहे हैं और भीष्म ने उत्तरायण बिना प्राण त्याग किए नहीं, अब दृष्टांत दे रहे हैं, आंदे तुसी कह रहे जे देश काल आसन की जरूरत नहीं है ज्ञानी को, हाँ जी तो भीष्म ज्ञानी नहीं सी, पितामा भीष्म वो ज्ञानी नहीं सी, उन्हें फिर उत्तरायण का क्यों अड़ीक की, इन्ने दिन उत्तरायण लगेगा तब मैं शरीर छड़ूंगा, उन्हें क्यों फिर जरूरत पई? तुम कह रहे हो ना देश की जरूरत है, ना आसन की जरूरत है, ना कहे की जरूरत है। तो भीष्म आदि ज्ञानी नहीं सी, जो ज्ञानी तुम मानते जे तो फिर उन्होंने उत्तरायण का क्यों अड़ीक की, मैं उत्तरायण आऊगा तब शरीर छड़ूंगा। वो सुनो, यद्यपि भीष्म आदि के ज्ञानी कहे हैं और भीष्म ने उत्तरायण बिना प्राण त्याग किए नहीं, तथापि फिर भी भीष्म आदि के अधिकारी पुरुष हैं, जाते उपासन के उपदेश वास्ते तिन्हों ने काल विशेष की प्रतीक्षा करी है। उपासक जेड़े थे उन्होंने उपदेश करने वास्ते उन्होंने गुरु नानक देव जी ने क्यों दुकान की थी? कि उन्होंने मामला थोड़ गया सी, उन्होंने उपदेश किया है। अधिकारी महापुरुष जड़े है ना, उन्होंने जेड़ा भी काम होगा वो जीवां दे उपदेश वास्ते होगा, दूसरे दे भले वास्ते, ठीक है ना। ऐसे वो कह रहे भीष्म पितामह का भी यही हाल सी, भीष्म पितामह ज्ञानी सी पर उन्हें जो उपासक सी उन्होंने शिक्षा देन वास्ते कि ताड़ा जेड़ा शरीर जे पात होवे उत्तरायण विच ते बहुत बढ़िया रहेगा, तभी फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलने वाला। विशिष्ट भीष्म आदि का अधिकारी हैं, अधिकारी किनू कहिंदे हैं ये भी सुन लो, जाते भी उनको अनेक जन्म हुए हैं, काहे ते अधिकारी पुरुषन का एक कल्प पर्यंत प्रारब्ध होवे हैं, उन्हां दा एक ब्रह्मा जी दा एक दिन इतना उन्हां दा प्रारब्ध है, वो अपनी इच्छा नाल जिहड़ा मर्जी शरीर धारण कर सकते हैं। तो शरीर जो धारण करेंगे इहदा अर्थ ये हो जाएगा कि फिर वो जन्म मरण में पै गए, आंदा नहीं उन्होंने ज्ञान बनिया रहेगा, ये नहीं है कि उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान ऐसे ही बना रहेगा, मुक्ति में उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा।